नमस्कार मित्रगण, रेडियो मधुबन में आप सबका फिर एक बार स्वागत। और हम अब सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम पठामी संस्कृतम, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे थोड़ा सा संस्कृत। और जैसा कि तुम्हें मालूम है, हम पढ़ रहे हैं शिव महिमनो स्तोत्र, तो आज भी हम इसी के दो अगले श्लोक देखेंगे। आओ मेरे साथ तुम भी इन श्लोकों का पाठ करना सीखो। हमारा अगला श्लोक है जिसमें कवि पुष्पदंत लिखते हैं, अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यः त्रिनयन विषम संहृतवतः सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपिश्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। तो यहाँ पर कवि पुष्पदंत ने शिव से संबंधित एक दूसरी घटना का वर्णन किया है, और यह घटना है जब समुद्र मंथन के समय समुद्र को मथते हुए हलाहल विष सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला, और समुद्र मंथन करने वाले जो देवता और असुर दोनों मिलकर के जो समुद्र मंथन कर रहे थे, वे सारे के सारे उस भयानक हलाहल विष के प्रभाव से अत्यंत भयभीत हो गए कि वह विष पूरे संसार को जला देने में समर्थ था, और वह प्रकट होते ही उसने संसार को जलाना आरंभ कर दिया था। तो ऐसे उस विष के कारण जो भयचकित भयभीत देवता और असुर दोनों ही हो गए थे, और अकांड ब्रह्मांड पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जो भयभीत हो गया था, तो ऐसे समय शिव ने उस विष का पान करके पूरे ब्रह्मांड को विष से मुक्ति दिलाई। तो यहाँ पर यह शब्द है अकांड ब्रह्मांड, अर्थात पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ऐसे ही दूसरा एक शब्द भी हम प्रयोग में लाते हैं, अकांड तांडव, अर्थात पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला तांडव नृत्य जो कि शिव करते हैं। और यहाँ पर फिर एक बार एक लंबे शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि संधि से बना है, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्य। और इस पूरे शब्द के अंत में जो स्य प्रत्यय लगा, उससे समझ में आता है कि यह षष्ठी विभक्ति का शब्द बन गया है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो क्षय होना आरंभ हुआ था हलाहल विष के कारण, और उसके कारण जो भयचकित देव और असुर हो गए थे, उन सब पर कृपा करने वाला शिव और उसके कंठ के विषय में यह कहा जा रहा है। तो आगे भी तव कंठे इस प्रकार का षष्ठी विभक्ति का शब्द प्रयोग हुआ है कि ऐसे तुम्हारे कंठ में विषम संवृतवतः, जो विष को कंठ में जो तुमने धारण कर लिया और इस प्रकार विष के तुम धारक बन गए, उसके कारण तुम्हारा कंठ नीला हो गया, और एक प्रकार से कहा जाए तो तुम्हारे कर्पूर गौर वर्ण के लिए वह कलंक के ही रूप में था, कलमाश था, कलंक था, लेकिन देवता और असुरों पर कृपा करने के विचार से वह कलमाश वह कलंक भी तुमने अपने कंठ पर धारण किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? तो कवि कहता है कि क्या वह कलमाश तुम्हारे कंठ में श्रियम अर्थात शोभा बढ़ाने वाला नहीं है? क्या वह तुम्हारे कंठ की शोभा बढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा है? तो इस घटना से यही सिद्ध होता है कि विकारोपिश्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनाहा, अर्थात जिनको भुवन अर्थात त्रिभुवन तीनों लोकों के भय का भंग करने का ही जिनको व्यसन जड़ गया है, जिनको उसकी आदत लग गई है, जिनको उसी में आनंद आता है, तीनों लोगों का भय हरण करने में ही जिन्हें आनंद आता है, ऐसे लोगों के लिए उनका जो विकार होता है, उनकी जो कोई विकृति अगर पैदा हो जाती है, तो वह विकृति या वह विकार भी उनके लिए श्लाघ्य अर्थात प्रशंसनीय बन जाता है, क्योंकि उस विकार के पीछे कहीं ना कहीं त्रिभुवन का भय निवारण करने की भूमिका में वह विकार धारण किया जाता है। तो तुमने भी यह हलाहल विष का जो कलमाश है या कलंक है या विकार है, यह अपने कंठ पर जब धारण किया तो क्या उसने तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ाई? और यहाँ दो शब्दों का प्रयोग कवि ने और किया है, त्रिनयन और अहो। तो ये दोनों ही शब्द संबोधनात्मक हैं। हे त्रिनयन, हे तीन नेत्रों वाले शंकर, और अहो अर्थात जब हम कहते हैं कि अहो क्या बात है, तो उस प्रकार से ये कहा गया कि क्या यह श्रेय नहीं है, तव न कुरुते न श्रियम हो। अहो सोचो कि क्या वह तुम्हारे लिए शोभादायक नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। अगले श्लोक में कवि कहता है, असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन् ईशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिशुपथ्यः परिभवः। तो यहाँ एक दूसरी घटना का वर्णन है जो कि मदन या कामदेव से संबंधित है। तो उस कामदेव का वर्णन कवि इस प्रकार करता है कि यस्य विशिखाः, जिसके बाण, नैव असिद्धार्था, कभी भी असफल नहीं हुए, नैव क्वचिदपि, कभी भी कहीं भी असफल नहीं हुए, सदेवा सुर नरे, अर्थात ना तो देवताओं पर असफल हुए, ना तो असुरों पर असफल हुए, और ना ही मनुष्यों पर असफल हुए। वे कभी भी मदन को या कामदेव को जय दिलाए बिना वापस नहीं आए, ऐसा जगत विख्यात था। लेकिन सपश्चन ईशत्वाम इतर सुर साधारणम, उस कामदेव ने तुम्हें कैसे देखा, किस नज़र से देखा, किस प्रकार देखा? तो हे ईश, हे शिव, उस कामदेव ने तुम्हें भी, इतर जो साधारण देवता थे उन्हीं की तरह उसने तुम्हें भी समझ लिया, और इसलिए बिना सोच विचारे उसने तुम पर भी वही अपने कामदेव के बाण चला दिए। और उसका परिणाम क्या हुआ? तो ऐसा जो स्मर अर्थात कामदेव, उसका क्या हाल हुआ? तो वह स्मर्तव्यात्मा हो गया, अर्थात ऐसी आत्मा जो केवल स्मरण में ही बाकी रहती है, अर्थात मृत। तो कथा है कि जब कामदेव ने शिव पर अपना मदन बाण चलाना चाहा और उनकी तपश्चर्या भंग करनी चाही, तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस नेत्र के प्रभाव से कामदेव भस्मसात हो गया। और इसीलिए कामदेव, जिसका दूसरा नाम मदन भी है, उसे एक तीसरा नाम मिल गया, अनंग, अर्थात उसके सारे अंग भस्मीभूत हो गए। तो उसकी पत्नी रति ने शिव की बहुत प्रार्थना की और कहा कि हे शिव जी, अगर आपने कामदेव को पूरी तरह से विनष्ट कर दिया तो यह संसार किस प्रकार चलेगा, क्योंकि यह कामदेव ही है जो लोगों में, सृष्टि में प्रणय की भावना को जगाता है और यहाँ पर प्रजनन की क्रिया को संपन्न कराता है। तो अगर आपने उसको पूरी तरह से विनष्ट कर दिया तो यह सृष्टि आगे नहीं चलेगी। तब शिव ने कहा कि ठीक है, मैं उसे यह वरदान देता हूँ कि उसका अस्तित्व चलता रहेगा, पर उसके अंग सब नष्ट हो ही चुके हैं, जल के भस्म हो चुके हैं, तो वह अनंग कहलाएगा और इस प्रकार उसका काम वह आगे भी कर पाएगा। इस प्रकार कृपावंत होकर के शिव जी ने कामदेव और रति को यह वरदान दिया कि वे दोनों अपना काम चलाए रख सकते हैं। लेकिन फिर भी यह घटना तो बाकी रहती है कि वह स्मर्तव्यात्मा हो गया, अर्थात मृत हो गया। इसीलिए कहा गया है कि नहि वशिषु पथ्यः परिभवः, परिभवः अर्थात अपमान, और वशिषु यह सप्तमी है कि ऐसा व्यक्ति जो संयम करना जानता हो, जो संयम का पुतला हो, उसका परिभव, उसका अपमान जब मदन ने करना चाहा तो वह उसके लिए पथ्यकर नहीं हुआ, अपथ्यकर हो गया और उसे मरना पड़ा, उसकी देह भस्मसात हो गई। इसीलिए कहा गया है कि जो संयम रखना जानते हैं उनका अपमान अगर करने का कोई प्रयास करे तो वह प्रयास उसके लिए अवश्य ही अपथ्यकर बन जाता है। और इसीलिए जो स्मर था वह स्मर्तव्यात्मा हो गया, अर्थात मृत हो गया। तो इस प्रकार इस कहानी को भी कवि पुष्पदंत ने बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक में गूंथा है। आइए इन दोनों श्लोकों को फिर एक बार देखते हैं। अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यः त्रिनयन विषम संहृतवतः सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि स देवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन् ईशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिशुपथ्यः परिभवः। और मित्रों, अब हमारा समय समाप्त होता है। इन्हीं दो श्लोकों के साथ हम अपना आज का पाठ समाप्त करते हैं। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो शिव महिम्नो स्तोत्र और समझते रहो, इसका भी मनन करते रहो, सीखते रहो और सुनते रहो रेडियो मधुबन। मुस्कुराते रहो। नमस्कार।